आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम लोग आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रंगास मैरिज और इसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। सो मस्ती वेंकटेश जो है वो एक कन्नड़ा के बहुत बड़े एक राइटर हैं एंड इन फैक्ट वो 4th ऐसे कन्नड़ा के राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया है और उनका जन्म हुआ था होसाहल्ली विलेज में और ये बैंगलोर के पास एक छोटा सा गांव है। तो ये कहानी जो है वो इंडिया में किस तरह से लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज को देखा जाता है और किस तरह से सब चीज़ चेंज हो रही है उसके बारे में। तो इसका मेन कैरेक्टर जो होता है वो ऑफकोर्स हमारा रंगप्पा है, जिसको जिसका शॉर्ट हम लोग रंगा बोलते हैं। तो वो पहला एक ऐसा इंसान है जो कि अपने गांव से बाहर निकल के शहर गया है पढ़ने के लिए। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं स्टोरी आगे कैसे प्रोसीड करती है। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana. But then, this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence, no fancy title. Hosahalli is our village. You must have heard of it. No? What a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on the map. So, yahan pe bata rahe hain ki agar wo writer bol rahe hain ki main agar chahta to isko ek bahut hi फैंसी सा कुछ नाम दे सकता था, जैसे रंगनाथा विवाहा या फिर रंगनाथा विजया या गिरिजा विजया कल्याणम, तो इस तरह का वो नाम दे सकते थे, लेकिन वो कोई भी फैंसी नाम इस स्टोरी का नहीं देना चाहते थे बिकॉज ये उनके रंगा के बारे में थी। और रंगा कौन था? वो अकाउंटेंट का बेटा था, जो होशाहल्ली विलेज का जो अकाउंटेंट था वो उसका बेटा था जो कि बाहर गया था, मतलब शहर गया था पढ़ने के लिए। सो ये इतना मतलब एक कॉमन से अनकॉमन मैन के बारे में ये स्टोरी है और इस वजह से उन्होंने बहुत ही बेसिक और सिंपल चैप्टर का नाम रखा है जो कि है रंगाज मैरिज। सो वो जो है रंगा कहाँ का है और ये जो नरेटर है वो कहाँ के हैं? वो होसाहल्ली विलेज के हैं। सो वो अब हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने होसाहल्ली का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो इस वजह से क्योंकि जो ऑफकोर्स हम लोग सबको पता है कि जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने जो भी हमारी कंट्री की मैपिंग करी और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उनके अकॉर्डिंगली आज तक रखा हुआ है। सो जो उस वक्त के ब्रिटिशर्स थे, जो जियोग्राफर्स थे, उन्होंने मैप पे ये जगह यानी होसाहल्ली विलेज को लोकेट नहीं करा और उसके बाद ब्लाइंडली जो उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो लोग थे उसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते गए और इसी वजह से जो हमारे खुद के इंडियन कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं जो कि मैप बनाते हैं, तो ज्योग्राफर्स और कार्टोग्राफर्स थे उन्होंने भी फिर ये मैप में इसकी परछाई तक को नोटिस नहीं करा, मतलब ये कि कहीं भी उस विलेज का मेंशन नहीं है आज तक मैप पे। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑन इन अनदर डायरेक्शन। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्षा व्हाट द स्वीट कारी गाडाबू इज टू अ फेस्टिव मील, then Hoshahalli is to Mysore state what the filling is to Kari Gadabu. What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hoshahalli. We have a doctor in our place. His name is Gundabhatta. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, "No, Annaya, I have left that to you. Running around like a flea-pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though." As a matter of fact, he has seen many. "We have some mango trees in our village. Come visit us, and I'll give you a raw mango from one of them. Do not eat it. Just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahma Randhra." I once took one such fruit home, and a chutney was made out of it. All of us ate it, the cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. So, यहाँ पे जो राइटर हैं वो अपने विलेज के बारे में बहुत ही ऊंचा सोचते हैं और वो काफी ज्यादा प्राउड हैं कि वो एक होसाहली जैसे गांव से बिलोंग करते हैं. तो वो यहाँ पे कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि जो मैसूर की मैसूर सिटी है, हम लोग सबको पता है कि वो बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कितना ज्यादा एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज रही है. सो वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर अगर हम लोग मैसूर को जो है वो भारतवर्ष के टाइम से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो जो है वो उसी तरह है जैसे कि ये जो स्वीट है कारी गाडबू वो एक फेस्टिव मील के लिए होती है. लाइक मतलब कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये फेस्टिव मील के लिए स्वीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है. तो अगर ये मैसूर भारतवर्ष के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है तो होसाहली विलेज जो है वो मैसूर के लिए कैसा है कि उस मिठाई के फिलिंग जैसी है. मतलब वो उसका बिल्कुल कोर पार्ट है. ये क्या बता रहा है कि मैसूर जो क्या जो मेन पार्ट जो कोर पार्ट है वो ये विलेज है होसाहली. एंड इनफैक्ट ये कहते हैं कि आप जो है एक डिबेट के लिए यू आर ओपन फॉर अ डिबेट, लेकिन जो राइटर है वो अपने पॉइंट पे अड़े रहेंगे. और मतलब वो कहते हैं कि ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो अपने विलेज के बारे में इतना ज़्यादा पोजेसिव हूँ या इतना हाईली सोचता हूँ, बल्कि वहाँ के जो एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है गुंडा भट्टा, वो भी ऐसा ही सोचते हैं. मतलब वो ये कहते हैं कि मैं इतनी सारी जगह फिर चुका हूँ लेकिन फिर भी माय हार्ट लाइज, मेरा दिल जो है वो होसाहली विलेज में ही है. तो वो अपने विलेज की कुछ खास बातें भी हमें बता रहे हैं, हमसे शेयर कर रहे हैं. तो उनके यहाँ पे ना एक आम का पेड़ है काफी सारे. तो वो आम के पेड़ की ये जो खासियत है कि वो जो फल लगते हैं उस पे आम जो है वो इतना ज्यादा खट्टा आम होता है कि वो आपके ब्रह्मरंध्रा, वो ब्रह्मरंध्रा क्या होता है, वो एक कन्नड़ा टर्म है. जो आपने जो न्यूबॉर्न बेबीज देखे होंगे तो आपने देखा होगा उनका जो स्कल का पार्ट होता है, जो सिर का पार्ट होता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे बोन नहीं आई होती है. और अगर आप उसको टच करोगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा आपको क्योंकि वहाँ पे बोन नहीं होती है. तो इसका मतलब ये है कि वो इतना खट्टा है कि आपके सीधे दिमाग में जाके लगेगा. और एक बार ये राइडर जो है उसमें से एक आम लेकर के गए थे और उन्होंने उसकी क्या बनाई थी, चटनी बनाई थी. एंड वो चटनी इतनी खट्टी थी कि उन सारे लोगों को खांसी हो गई. और जब राइटर जो है वो कफ सिरप लेने गए तब जो है वो डॉक्टर ने उस आम की, उस पेड़ के आम की उस उनको खासियत बताई. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. Its flowers are a feast to behold. Get two leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say, "I am rambling." It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahalli is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? So, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ आम के पेड़ ही वो अपनी खटास के लिए नहीं मशहूर है, बल्कि यहाँ एक जो है वो क्रीपर है, एक ऐसा पौधा उगता है पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे वहाँ के, कि वो इतने बड़े होते हैं कि उनको आप एज प्लेट्स यूज कर सकते हो. तो जब आप उस नहर, आप जब उस पॉन्ड में, तालाब में जब आप नहाने जाओ तो वहां से आप पत्तियां उसकी तोड़ लो, और आपको आफ्टरनून मतलब लंच के लिए आपको प्लेट की टेंशन की जरूरत नहीं है। सो वो कहते हैं कि हाँ, मैं, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ इसके बारे में, अपने विलेज के बारे में, लेकिन ऐसा हो जाता है जब भी होसा हल्ली के बारे में कोई मेंशन करता है। और इनफैक्ट वो हमें इनवाइट भी कर रहे हैं कि अगर हमें उस प्लेस को, उसके बारे में और जानना है, तो नेचुरली हमें वहां पे रह करके, उसको विजिट करके उसके बारे में और जानना चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. What has happened is disgraceful, believe me. The other day, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 paise, she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. The priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies here, it seems. And come, Ranga is here. Let's go and have a look." So, अभी वो बता रहे हैं कि अब जो है वो अपनी मेन स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं कि रंगा की शादी, जो रंगा मैरिज है, बेसिक मेन टॉपिक हमारा वो क्या है। तो ये उन दिनों की बात है, 10 साल पहले की, जब से ये स्टोरी लिखी गई है तब से 10 साल पहले की बात वो बता रहे हैं कि उस टाइम पे क्या था कि उनके विलेज में ज्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश नहीं बोला करते थे, और अब काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब हर आपको गली में आपको लोग दिखेंगे जो कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में क्या होता था कि वो लोग इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं लाते थे जब वो लोग कन्नड़ा में बात कर रहे होते थे। तो एक टाइम का बात है कि जब जो राइटर है वो रामा राव के घर पे बैठे हुए थे, और उनके वो कुछ एक लेडी आती है बेचने वाली, और उसने जो है, रामा राव का बेटा बाहर आता है तो उसको दाम पूछता है, तो लेडी बोलती है कि वो 4 पैसे की चीज थी। उस वक्त आप सोचो कि जब से स्टोरी लिखी गई है तब तक पैसे जो है वो मतलब रुपए में नहीं बल्कि पैसे में काम हो जाता था, है ना, एक आना दो आना वैसी वाली चीजें। तब जो रामा राव का बेटा था उसने उस लेडी को कहा कि सॉरी, आप कल आ जाइएगा, मेरे पास अभी चेंज नहीं है। तो वो लेडी को समझ नहीं आया क्योंकि चेंज जो है वो क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। इनफैक्ट जो राइटर है उनको खुद को भी समझ नहीं आया कि चेंज का मतलब वहाँ पे क्या था। जब वो रंगा के घर गए तब उन्हें पता चला कि चेंज का मतलब जो होता है वो खुदरे पैसे होते हैं। तो ये देखो, अब ये सेटिंग थी उस टाइम पे होसा हल्ली विलेज की, और उस टाइम पे जो अकाउंटेंट का अकाउंटेंट था उसने वो हिम्मत करी थी कि अपने बेटे को बैंगलोर यानी एक शहर, बड़े शहर पढ़ने भेजे। तो इस वजह से जो रंगा है उसका इतना चर्चा था क्योंकि वो वन ऑफ द फर्स्ट बॉयज था जो बाहर जाकर के उसने पढ़ाई करी थी। सो जब इसी वजह से जब वो वापस अपने गांव होसा हल्ली आया तब सारे जो गांव वाले थे वो बिल्कुल उसको बहुत ही एक सेलिब्रिटी के जैसा ट्रीट करने लगे। सब लोग आपस में बोलने लगे कि अरे वो अकाउंटेंट का बेटा वापस आ गया है, चलो उससे जाके मिलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कहीं वो बदल तो नहीं गया, वो क्या उसके कल्चर में चेंजेस आ गया है क्या। तो ये सारी चीज़ें होने लगी गाँव में, ये सारी बातें होने लगी। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड आई टू वेंट and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There's no performing monkey here." A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear. What are you doing here then? A youngster, immature and without any manners. Thinking that all these things were now the past, I kept quiet. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago, when he had first left our village. An old lady was near him, ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janevara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away, like a lump of sugar in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessings." I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present-day boy with his head towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. "May you get married soon," I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. So, ab kya hota hai ke Ranga ko dekhne sara gaon Ranga ke ghar ke bahar khada ho jata hai. Ye dekhne ki Ranga change hua hai kya, usme kya changes aaye hain. To writer batate hain ki wahan pe itni bheed thi ki agar sab koi wahan pe jaake khada ho jata to wo Calcutta ka black hole ban sakta tha. Okay, so yahan pe kya hota hai ki ek old lady jo hai wo Ranga ke paas jaati hai. और फिर वो चेक करती है कि रंगा ने वो जो कास्ट वाला जो थ्रेड होता है, आप लोगों ने देखा हो कुछ कुछ लोग ऐसा वाइट थ्रेड पहनते हैं, सो वो थ्रेड पहना हुआ है कि नहीं. और जैसे ही वो जो है वो टच करती है उसके चेस्ट को, तो देखती है कि वो थ्रेड है. और तब जो है वो लेडी बोलती है कि अरे उसने अपनी कास्ट जो है वो नहीं छोड़ी, क्योंकि उन लोग का जो अजम्पशन होता है वो यही होता है कि जब जो लोग हैं वो बड़े शहरों में चले जाते हैं तो वो लोग अपनी कास्ट वगैरह ये सब भूल के आ जाते हैं. फिर जब एक एक करके सारे गांव वालों ने ये मेक श्योर कर लिया कि रंगा जो है वो कहीं से भी नहीं बदला है, तब एक एक करके वो सारे जाने लगे. एंड जब सब लोग ऑलमोस्ट चले गए थे, तब जो नरेटर हैं और जो राइटर हैं, तो वो बाद में रंगा से पूछते हैं कि मतलब कैसे हो तुम, क्या हाल है, सब कुछ ठीक जो है. तब जो है वो जो रंगा होता है वो काफ़ी पोलाइटली और काफ़ी रिस्पेक्टफुली आता है, और नरेटर का पैर जो है वो पूरी तरह से अच्छे से, जिस तरह से आशीर्वाद लिया जाता है वो वैसे झुक करके आशीर्वाद लेता है. एंड देन जो हमारे नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वो नॉर्मल लड़कों जैसे उसने उनको नमस्कार नहीं किया, उन्होंने उसने रंगा ने प्रॉपरली झुक करके उनके पैर छुए, ना कि आजकल के मॉडर्न लड़के जिस तरह से वो बिल्कुल एक पोल जैसे स्टिफ अकड़े हुए खड़े होते हैं और यानी तो सिर्फ नमस्कार करके छोड़ देते हैं. मतलब वो उसकी खूबी बता रहे हैं कि वो भले ही बैंगलोर गया था पढ़ने, लेकिन उसने अपने वैल्यूज नहीं खोए. दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अ जेनरस कंसिडरेट फेलो. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट. फॉर अ व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. Why not? I need to fix the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides, is there? What would happen to Kalidas' play? If one gets married, it should be a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. Is there any other reason? A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other? Or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. One a neem fruit, the other a bitter gourd. Exactly, Ranga said, laughing. I was stressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a long time, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. सो जो नरेटर हैं उन्होंने सोचा कि रंगा जो है वो इतना ज़्यादा संस्कारी लड़का है, इसकी जल्दी से किसी अच्छी जगह शादी करा देनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए. और तभी थोड़ा सा चिट चैट करने के बाद जो नरेटर है उसने फौरन पूछ ही लिया कि रंगा तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है. तो रंगा ने कहा कि मैंने अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि वो ऐसी कोई शादी नहीं करना चाहता है जो लड़की उससे काफ़ी छोटी हो. इनफैक्ट वो एग्जाम्पल भी देता है कि उसके एक वो एक ऑफिसर को जानता है जो खुद 35 है और उसकी वाइफ जो है वो 25 की है. तो जब वो लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं तो वो समझ आता है उन लोगों को कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं. लेकिन अगर ऐसा इमेजिन किया जाए कि मैं किसी एक बहुत ही छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लूँ और मैंने कोई बात उसे प्यार से बोली और वो समझ जाए कि मैंने गुस्से में बोली है, तो पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है. और फिर वो एक और एग्जांपल देता है कि अगर कालिदास का जो प्ले है शकुंतला और दुष्यंत का, तो अगर शकुंतला जो है वो दुष्यंत से काफ़ी छोटी होती तो दुष्यंत उसके प्यार में पड़ता ही नहीं. और इसी वजह से वो नहीं चाहता है कि वो किसी ऐसी एक इमेच्योर लड़की से शादी करे, उसको अपनी शादी के लिए काफ़ी एक मैच्योर लड़की चाहिए. और इसी वजह से वो एक सही लड़की के लिए अभी तक वेट कर रहा है. रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her, and she the most suitable bride for him. Since I was a frequent visitor at Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name. Ratna, it was. The next morning, I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. Ratna came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga. While she was singing the song, Krishnamurti, in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. Suppose you buy the best quality mango. You eat it slowly, savoring its peel before biting into juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls into the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. You sent for me? He asked as he came in and sat on the chair. Ratna stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a while. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in the days of Kaliyug? Ratna ran inside, overcome by shyness. After a while, Ranga asked, Who is that girl, Swami? So, अब क्या होता है कि जब रंगा ने अपना प्रेफरेंस बता दिया नरेटर को कि ना उसे बहुत ही ज्यादा उम्र वाली लड़की चाहिए ना ही एकदम बच्ची लड़की चाहिए, बिल्कुल एक अपने एज की हम उम्र लड़की चाहिए जिससे वो शादी कर सके। अब बेचारे नरेटर का जो सपना था कि वो उसे एक अच्छी जगह सेटल कर देगा, वो सपना जो हो जाता है वो चूर हो जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि वो रंगा को किसी अच्छी जगह सेटल कर देगा, लेकिन उसके जो सर्वगुण संपन्न जो लड़का था, बहुत ही सुशील लड़का था, उसने डिसाइड कर रखा था कि उससे तो शादी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी नरेटर ने ये ठान लिया कि इसकी शादी तो वो करा के रहेगा। तब नरेटर को किसका ख्याल आता है, उसको रामा राव की भतीजी का ख्याल आता है जिसका नाम होता है रत्ना। तो रत्ना के बारे में हमें नरेटर बता रहे हैं कि रत्ना के दोनों पेरेंट्स जो हैं उनकी मौत हो चुकी है, दे बोथ आर डेड, और इस वजह से उनके जो अंकल हैं वो उसको इसके घर ले आए हैं। और वो रत्ना भी जो है वो रत्ना है वो एक बड़े शहर की लड़की है, और इस वजह से उसे वीणा और हारमोनियम बजाने आता है, और उसकी उम्र कितने की है, वो 11 सालों की है। तो उसने सोचा कि रंगा रंगप्पा के लिए जो बेस्ट मैच होगा वो किसका होगा, रत्ना का होगा। सो यही सोच करके जो हमारे राइटर हैं वो चले जाते हैं कहाँ पे, रामा राव के घर, और वो कहते हैं कि रत्ना मैंने तुम लोगों के लिए बटर मिल्क यानी जो लस्सी होती है वो उस तरह की चीज एक ड्रिंक जो है मैंने तुम लोगों के लिए बनाई है, और रत्ना को मेरे घर भेज देना तो मैं उसे दे दूंगा। और हम लोग सब ये जानते हैं कि ये राइटर का एक बहाना था सो दैट कि वो रत्ना और रंगप्पा को इंट्रोड्यूस करा सके। सो अब क्या होता है कि रत्ना आती है और जो हमारे राइटर है नरेटर है उसके घर पे चले जाती है बटर मिल्क लेने, और तभी क्योंकि रत्ना को हारमोनियम और वीणा बजाना आता है, तब जो राइटर हैं वो इंसिस्ट करते हैं रत्ना को गाने के लिए। और जब जैसे ही वो कृष्णमूर्ति गा रही होती है, वो एक सॉन्ग का नाम है, वो जब वो गा रही होती तभी वो अपने एक नौकर को भेज करके किसको बुलाते हैं अपने घर पे, रंगा को। सो जब वो रंगा को बुला लिया उन्होंने, तब इससे पहले कि रंगा उनके घर में एंटर हो सकता, ये जो एक मधुर संगीत की आवाज़ जो आ रही थी जो रत्ना गा रही थी वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया, जिसको बोलते हैं, वो वहीं पे रुक गया और रुक करके दरवाजे के पास ही रत्ना का गाना सुनने लगा। और जैसे ही रत्ना ने देखा कि खिड़की से कोई अनजान आदमी उसको देख रहा है, वैसे ही रत्ना जो है वो शर्मा करके साइड पे हो जाती है। और तब क्या होता है, तब जो रंगा होता है वो आता है, एंड देन वो लोग प्लेजेंट्रीज यानी मतलब नमस्ते ये सब करते हैं, एंड देन फिर वो कंटिन्यू जो है रंगप्पा जो रत्ना को देख रहा होता है, काफ़ी टाइम जो है वो नज़रें मिलती हैं, और फिर क्या होता है कि उसकी नज़र जो है वो किससे मिल जाती है, अब वो क्योंकि बार बार उसको देख रहा होता था ना, रत्ना को देख रहा होता था, तो एक बार क्या होता है कि राइटर और रंगप्पा की नज़रें मिल जाती हैं, तब क्या होता है जो रंगप्पा होता है वो एम्बेरस होकर के नीचे देखने लगता है। सो एक और बात जो है रंगा कहता है कि अगर मेरे आने से ये गाना रुका है तो इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला ही जाऊं। सो ये सुन करके जो है वो रत्ना और ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि यू नो उस टाइम पे ऐसे ही होता था, लड़कियां इतनी ज्यादा शाय होती थी, और स्पेशली अगर कोई स्ट्रेंजर जो कि आपके बारे में तारीफ कर रहा हो या फिर आपसे नजरें मिला रहा हो तो वो लोग बिल्कुल इसी तरह से शर्मा करके अंदर चली जाया करती थी। सो यही होता है। एंड फिर ऑफकोर्स अब क्या हो रहा था, जो राइटर का जो ट्रिक थी वो काम कर रही थी, और फिर जो है आखिर में उसने उससे पूछ ही लिया, राइटर से रंगा ने पूछ ही लिया कि कौन है ये लड़की। ओके सो अब जो है यहाँ पे स्टोरी आ चुकी है कि कहीं ना कहीं राइटर क्या कराना चाह रहे हैं कि रंगा के अकॉर्डिंग ही वो अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को, कि क्योंकि वो देख चुके हैं कि उसकी सोच जो है वो थोड़ी मॉडर्नाइज हो चुकी है, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज सेटअप में नहीं जाना चाह रहा है रंगा, तो कहीं ना कहीं वो लव कम अरेंज मैरिज उसकी कराना चाह रहे हैं। सो अब इस कहानी में आगे क्या होता है हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक आप लोग ये स्टोरी अपने से पढ़ेंगे, एंड मैं आपको आगे की स्टोरी आपके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।